एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने अमरीकी समाज में गरीबी और घर होने या ना होने के मुद्दे पर एक बेहद जरूरी बहस छेड़ी है, थोड़ी बेचैन करने वाली भी।
हाँ, ये किताब है मैथ्यू डेसमंड की पुलित्जर पुरस्कार विजेता रचना इविक्टेड, पॉवर्टी एंड प्रॉफिट इन द अमेरिकन सिटी, मतलब शहर में बेदखली, गरीबी और मुनाफा।
बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, यह सिर्फ आंकड़ों या सिद्धांतों की बात नहीं करती। इसकी असली ताकत उन लोगों की सच्ची कहानियों में है जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस मुश्किल से जूझ रहे हैं।
सही, लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका केंद्रीय विचार। डेसमंड कहते हैं कि घर से निकाला जाना यानी बेदखली, इविक्शन, वो सिर्फ गरीबी का नतीजा नहीं है।
हाँ, यही सबसे चौंकाने वाली बात है।
वो कहते हैं कि ये असल में गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है, एक जाल है जो लोगों को गरीबी के दुष्चक्र में और गहरे, मतलब और गहरा धकेलता जाता है।
और ये विषय आज मुझे लगता है पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। देखिए, रहने की जगह का पक्का ना होना, जिसे हम आवास की अस्थिरता कहते हैं, ये एक ऐसी समस्या है जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती है ना, खासकर शहरों की चकाचौंध में।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन डेसमंड की किताब पर्दे के पीछे जाकर दिखाती है कि कैसे ये अस्थिरता लोगों की जिंदगी, उनके परिवारों और पूरे समुदाय पर कितना गहरा और लंबे समय तक चलने वाला असर डालती है। और ये सिर्फ अमेरिका के मिलवॉकी शहर की कहानी नहीं है।
नहीं,
इसके सबक दुनिया के किसी भी शहर, किसी भी समाज पर लागू होते हैं, जहां लोगों को सिर छिपाने की जगह के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये हमें गरीबी को सिर्फ पैसे की कमी की तरह देखने के बजाय एक ज्यादा जटिल व्यवस्था से जुड़ी समस्या के तौर पर समझने का नजरिया देती है।
तो चलिए, इस अहम किताब को और समझने से पहले इसके लेखक मैथ्यू डेसमंड, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। कौन है वो और क्यों उनकी आवाज इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है?
मैथ्यू डेसमंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्हें उनके काम के लिए प्रतिष्ठित मैक आर्थर जीनियस ग्रांट भी मिल चुका है। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक अकादमिक विद्वान तक ही सीमित नहीं है।
हाँ, जो बात उन्हें खास बनाती है वो है उनका रिसर्च करने का तरीका।
बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ लाइब्रेरी या ऑफिस में बैठकर डेटा का विश्लेषण नहीं किया, उन्होंने वो किया जिसे समाज विज्ञान में नृवंश विज्ञान अनुसंधान कहते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च। इसका मतलब है कि वो खुद जमीन पर उतरे।
जमीन पर उतरे मतलब
मिलवॉकी शहर के सबसे गरीब माने जाने वाले इलाकों में महीनों तक रहे, और ये कोई आसान काम नहीं था।
हाँ, जाहिर है।
और उन्होंने सिर्फ किरायेदारों के साथ ही वक्त नहीं बताया, बल्कि मकान मालिकों के साथ भी रहे। वो उनके जीवन का, उनकी रोजमर्रा की जदोजहद का हिस्सा बने, उनकी बातचीत सुनी, उनके फैसलों के पीछे की वजहों को समझा। ये सिर्फ कुछ सवाल पूछ लेना नहीं था, ये उन लोगों की दुनिया में शामिल होकर उसे अंदर से देखना और महसूस करना था।
अच्छा, यानी दोनों पक्षों को समझा, किरायेदार जो किराया देने के लिए संघर्ष कर रहे थे और मकान मालिक जो अपना व्यवसाय चला रहे थे।
हाँ, और यही चीज, ये दोहरा नजरिया उन्हें इस जटिल मुद्दे पर एक अनूठी और गहरी पकड़ देता है। वो किरायेदारों के रोजमर्रा के संघर्ष, उनके डर, उनकी उम्मीदों को भी समझते हैं, और साथ ही मकान मालिकों के नजरिए, उनके मुनाफे के गणित और कभी कभी उनके सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को भी सामने रखते हैं।
तो उन्होंने इन जीती जागती कहानियों को ठोस आंकड़ों और विश्लेषण के साथ मिला दिया है।
बिल्कुल, इसीलिए ये किताब दिमाग को सोचने पर भी मजबूर करती है और दिल पर असर भी छोड़ती है।
इस किताब का सार समझना हो एकदम संक्षेप में, तो ये किस बारे में है, फोकस क्या है?
संक्षेप में कहें तो इविक्टेड अमेरिका में आवास संकट का, खासकर कम आय वाले लोगों के किराए के बाजार की कठोर सच्चाइयों का एक बहुत शक्तिशाली पर्दाफाश है। डेसमंड मिलवॉकी शहर के 8 अलग अलग परिवारों की जिंदगी के उतार चढ़ाव को फॉलो करते हुए इस संकट की परतें खोलते हैं। ये दिखाता है कि कैसे निजी किराए का बाजार, जो कई लोगों के लिए घर पाने का एकमात्र जरिया है, अक्सर एक बेहद क्रूर और अस्थिर जगह बन सकता है।
और इसका मकसद सिर्फ दुखद कहानियां सुनाना तो नहीं होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। डेसमंड का असली लक्ष्य ये दिखाना है कि कैसे ये पूरा सिस्टम, ये बाजार की कार्यप्रणाली, व्यवस्थित तरीके से लोगों की जिंदगी और समुदायों को अस्थिर करती है, उन्हें तोड़ती है। वो गरीबी पर होने वाली आम बहस को बदलना चाहते हैं।
कैसी बहस?
वो बहस जो अक्सर व्यक्तिगत कमजोरियों, बुरी आदतों या गलत फैसलों पर अटक जाती है। डेसमंड इस बहस को उन बड़ी संरचनात्मक ताकतों की तरफ मोड़ते हैं जो लोगों को पीछे धकेलती हैं, जैसे आवाज बाजार की नीतियां, मुनाफे का दबाव, कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताएं।
अच्छा, तो ये किताब पाठक को एक तरह की यात्रा पर ले जाती है।
हाँ, एक ऐसी यात्रा जो अक्सर असहज करने वाली होती है। हम मिलवॉकी के गरीब पड़ोस की गलियों में पहुंच जाते हैं, उन परिवारों के साथ उनके घरों में जो अक्सर अस्थायी होते हैं, उनके रोज के संघर्ष को देखते हैं, कैसे महीने के एंड में किराया चुकाने के लिए जद्दोजहद होती है, कैसे बेदखली की अदालत इविक्शन कोर्ट में मिनटों में उनकी किस्मत का फैसला हो जाता है, कैसे अपना सारा सामान सड़क पर फेंके जाने का अपमान और सदमा झेलना पड़ता है,
और फिर
नया घर ढूंढना, और वो भी एक इविक्शन रिकॉर्ड के दाग के साथ, जो नया ठिकाना खोजना लगभग नामुमकिन सा बना देता है।
और आपने कहा था कि मकान मालिकों का नजरिया भी है इसमें।
हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। उनके लिए ये एक व्यवसाय है, उनके व्यापार मॉडल क्या है, वो किन परिस्थितियों में किराएदारों को निकालते हैं, क्या उन्हें कभी नैतिक संघर्ष महसूस होता है। यही डेसमंड एक कड़वी सच्चाई उजागर करते हैं कि कैसे कुछ लोगों की गरीबी दूसरों के लिए मुनाफे का सीधा रास्ता बन सकती है।
ये तो काफी गंभीर बात है।
हाँ, ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां मुनाफा मानवीय जरूरतों पर भारी पड़ सकता है। ये सब मिलकर हमें संकट की एक ज्यादा मुकम्मल तस्वीर देते हैं।
चलिए, अब किताब के अंदर थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। डेसमंड ने इन कहानियों और विश्लेषण को कैसे व्यवस्थित किया है, मतलब किताब की बनावट कैसी है?
डेसमंड ने किताब को मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बांटा है, जिनके नाम ही कहानी की दिशा बताते हैं। पहला रेंट, किराया, दूसरा आउट, बाहर, और तीसरा आफ्टर, बाद में। ये संरचना हमें बेदखली के पूरे चक्र को, मतलब शुरुआत से लेकर उसके लंबे समय तक चलने वाले परिणामों तक समझने में मदद करती है।
ठीक है, तो पहले भाग किराया रेंट पे आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से क्या दिखाया गया है?
ये हिस्सा पूरी तरह से किराया चुकाने के निरंतर, मतलब कभी न खत्म होने वाले संघर्ष पर केंद्रित है। डेसमंड हमें कुछ मुख्य किरदारों से मिलवाते हैं जिनकी जिंदगी के इर्द गिर्द ये किताब घूमती है, जैसे अर्लीन, एक अश्वेत अकेली माँ जो अपने दो किशोर बेटों के लिए एक स्थिर सुरक्षित घर खोजने के लिए लगातार जूझ रही है। उसकी कहानी दिल दहलाने वाली है। ये दिखाती है कि कैसे गरीब परिवारों की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, डेसमंड बताते हैं, कभी कभी 70 से 80% तक सिर्फ किराए में चला जाता है।
70 से 80% सिर्फ किराए में, जरा सोचिए।
हाँ, जरा सोचिए, इतनी कम आमदनी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ सिर पर छत बनाए रखने के लिए खर्च हो जाए, तो बाकी जरूरी चीजों, खाना, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य के लिए क्या बचता होगा?
कुछ भी नहीं बचता होगा। और किरदारों की बात करें तो और कौन है? और भी किरदार हैं जो अलग अलग हालात दिखाते हैं, जैसे लोरेन, एक बुजुर्ग श्वेत महिला जो अपनी विकलांगता पेंशन पर गुजारा करती है और एक ट्रेलर पार्क में रहती है। उसकी कहानी दिखाती है कि कैसे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बुजुर्ग भी किराए के बोझ और बेदखली के डर से अछूते नहीं है। फिर है स्कॉट, एक श्वेत व्यक्ति जो पहले नर्स था लेकिन नशे की लत के कारण अपनी नौकरी और घर खो चुका है और अब कम वेतन वाली नौकरियों के सहारे जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। उसकी कहानी ये बताती है कि कैसे जिंदगी का एक संकट, एक गलत मोड़, किसी को भी बेघर होने के कगार पर ला सकता है।
और इसी भाग में मकान मालिकों की दुनिया भी दिखाई देती है ना?
बिल्कुल, यही हम शेरिना टारवर से मिलते हैं। वो एक अश्वेत महिला हैं जो पहले स्कूल टीचर थी और अब अपने पति के साथ मिलकर शहर के उन्हीं गरीब इलाकों में कई किराए की संपत्तियां चलाती हैं जहां वो खुद पली बड़ी हैं। उसकी कहानी थोड़ी जटिल है।
जटिल कैसे? मतलब वो समुदाय को समझती है लेकिन साथ ही अपना व्यवसाय चलाने और मुनाफा कमाने के लिए उसे कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं, जैसे किराएदारों को निकालना। दूसरी तरफ है टोबिन चारनी, एक बड़े ट्रेलर पार्क के श्वेत मालिक। उनका रवैया ज्यादा दूरी वाला और पूरी तरह से व्यावसायिक है, जहां मुख्य जोर मुनाफे पर है।
अच्छा,
इन दोनों के जरिए डेसमंड कम आय वाले आवास बाजार के अर्थशास्त्र और नैतिकता के मुश्किल सवालों को सामने लाते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे इस बाजार में पैसा कमाया जाता है और अक्सर इसकी कीमत कौन चुकाता है।
और फिर जब किराए नहीं दे पाते या कोई और नियम टूटता है तो अगला पड़ाव आता है किताब का दूसरा भाग, बाहर, आउट। ये किस बारे में?
ये हिस्सा बेदखली की असल प्रक्रिया का एक बहुत ही मार्मिक और अक्सर परेशान करने वाला चित्रण है। डेसमंड हमें बेदखली अदालत के अंदर ले जाते हैं।
वहाँ क्या होता है?
वो दिखाते हैं कि कैसे ये अदालतें अक्सर भीड़भाड़ वाली थोड़ी अराजक जगह होती हैं, जहां जजों के पास हर केस के लिए बस कुछ ही मिनट होते हैं। ज़्यादातर किराएदार बिना किसी कानूनी मदद के आते हैं, उन्हें अपने अधिकार पता नहीं होते और फैसले अक्सर मकान मालिकों के हक में जाते हैं। ये सोचना ही कितना मुश्किल है कि मिनटों में किसी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला हो जाता है।
और अदालत के फैसले के बाद असल बेदखली का अनुभव वो कैसा होता है?
उसे सेट आउट कहा जाता है और डेसमंड इसे बहुत विस्तार से और संवेदनशीलता से बयान करते हैं। ये वो क्षण होता है जब शेरिफ के लोग या पेशेवर मूवर्स आते हैं और किराएदार का सारा सामान, उनके कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, बच्चों के खिलौने, उनकी यादें, सब कुछ उठाकर घर से बाहर सड़क पर या फुटपाथ पर फेंक देते हैं।
अरे बाप रे।
हाँ, ये सिर्फ सामान का नुकसान नहीं होता, ये सार्वजनिक रूप से किया गया अपमान होता है, इज्जत का तार तार रोना होता है।
बिल्कुल।
हम किताब के कुछ किरदारों जैसे क्रिस्टल, विनेटा और आर्लीन को इस दर्दनाक अनुभव से गुजरते देखते हैं और महसूस करते हैं कि ये उनके लिए कितना बड़ा आघात है।
सही बात है, ये सिर्फ घर खोना नहीं, ये सुरक्षा, गरिमा और अपने समुदाय से कट जाने जैसा है।
बिल्कुल,
ये सुनने में ही बहुत भयावह है। इसके बाद किताब का तीसरा और आखिरी हिस्सा आता है, बाद में, आफ्टर। ये बेदखली के बाद की जिंदगी पर केंद्रित है।
हाँ, ये हिस्सा बेदखली के उन दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक चलने वाले परिणामों की पड़ताल करता है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। डेसमंड यहाँ स्कारलेट ई के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
स्कारलेट ई, ये क्या है?
ये नथानियल हॉथोर्न के उपन्यास द स्कारलेट लेटर का रेफरेंस है, जहाँ नायिका को अपने पाप के प्रतीक के रूप में अक्षर ए पहनना पड़ता था। उसी तरह डेसमंड कहते हैं कि एक बार किसी के रिकॉर्ड पर इविक्शन का ठप्पा लग जाए तो ये एक अदृश्य दाग की तरह उनके साथ चिपक जाता है।
अच्छा, और इसका नतीजा क्या होता है? ये स्कारलेट ई जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है?
इसका सबसे सीधा नतीजा ये होता है कि नया घर ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ज्यादातर मकान मालिक ऐसे किराएदारों को घर देने से कतराते हैं जिनके नाम पर पहले से बेदखली का रिकॉर्ड हो।
तो फिर लोग कहाँ जाते हैं?
इससे लोग और भी ज्यादा हताश और असुरक्षित स्थितियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। वो शायद और भी खराब या खतरनाक इलाकों में ज्यादा किराए पर घर लेने को मजबूर होते हैं, या फिर बेघर आश्रयों, होमलेस शेल्टर्स का रुख करते हैं, जो अक्सर भीड़भाड़ वाले, असुरक्षित और अस्थायी ठिकाने होते हैं।
और ये अस्थिरता सिर्फ रहने की जगह तक सीमित नहीं रहती होगी, इसका असर और जगह भी पड़ता होगा।
बिल्कुल नहीं, ये अस्थिरता जिंदगी के हर पहलू में फैल जाती है। लोग अक्सर अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के यहाँ रहने चले जाते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव आता है और रहने की जगह बहुत तंग हो जाती है। डेसमंड बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे बेदखली एक दुष्चक्र को जन्म देती है।
दुष्चक्र कैसे?
घर खोने के कारण लोगों की नौकरी छूट सकती है, बच्चों को बार बार स्कूल बदलना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई और सामाजिक विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लगातार तनाव और अनिश्चितता के कारण मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आम हो जाती है। ये सब मिलकर लोगों के लिए गरीबी से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। एक बेदखली अक्सर अगली बेदखली का रास्ता तैयार करती है।
तो संक्षेप में, ये कहानियां सिर्फ कुछ लोगों की निजी तकलीफें नहीं हैं, ये एक बड़ी प्रणालीगत समस्या की तरफ इशारा करती हैं, जहां सिस्टम ही लोगों को नीचे धकेलता रहता है।
बिल्कुल सही।
तो इन मार्मिक कहानियों और गहरे विश्लेषण से कौन से मुख्य विषय या संदेश हैं जो डेसमंड हम तक पहुँचाना चाहते हैं?
कई अहम संदेश हैं, लेकिन कुछ सबसे जरूरी विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे केंद्रीय तो वही है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की, बेदखली गरीबी का सिर्फ नतीजा नहीं बल्कि एक बड़ा कारण है। ये किताब का मूल तर्क है। डेसमंड बार बार दिखाते हैं कि कैसे घर खोने का अनुभव लोगों को और ज्यादा गरीब बनाता है।
हाँ, उनकी बचत खत्म कर देता है, उनके सामाजिक नेटवर्क को तोड़ देता है और भविष्य में उनके लिए मौके कम कर देता है।
बिल्कुल। दूसरा अहम विषय है आवास को एक व्यवसाय के रूप में देखना बनाम एक बुनियादी मानवाधिकार के रूप में देखना। किताब ये सवाल उठाती है कि क्या किसी की बुनियादी जरूरत, सिर पर छत होना, किसी दूसरे के लिए भारी मुनाफा कमाने का जरिया बन सकती है?
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
डेसमंड दिखाते हैं कि कैसे कम आय वाले आवास बाजार में, जहाँ किराएदारों के पास विकल्प कम होते हैं, मकान मालिक अक्सर खराब या असुरक्षित घरों के लिए भी बहुत ज्यादा किराया वसूल सकते हैं। यहाँ ये नैतिक सवाल खड़ा होता है कि क्या मुनाफे की दौड़ में मानवीय जरूरतों को अनदेखा किया जा सकता है?
सही। और क्या कोई खास समूह है जिस पर इस संकट का असर ज्यादा पड़ता है?
हाँ, डेसमंड आंकड़ों और कहानियों, खासकर अर्लीन जैसी अकेली माताओं की कहानियों के जरिए ये उजागर करते हैं कि इस संकट का असमान बोझ अश्वेत महिलाओं और उनके बच्चों पर पड़ता है। अमेरिका के संदर्भ में नस्लीय भेदभाव और लिंग आधारित पूर्वाग्रह मिलकर अकेली माताओं, खासकर अश्वेत माताओं को और ज्यादा कमजोर बनाते हैं।
अच्छा, मकान मालिक उन्हें अक्सर अविश्वसनीय किरायेदार मानते हैं।
हाँ, और उन्हें घर देने या रखने में आनाकानी करते हैं। बच्चों वाली महिलाओं को निकालना आसान समझा जाता है।
और आखिर में क्या सिर्फ आर्थिक या सामाजिक असर ही होता है या कुछ और भी?
नहीं, डेसमंड इस बात पर भी जोर देते हैं कि लगातार अस्थिरता के गहरे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक घाव होते हैं। बेदखली सिर्फ छत खोना नहीं है, ये अपने समुदाय से कटना, अपनी पहचान और सम्मान खोना और लगातार डर और अनिश्चितता में जीना है। इसका बच्चों पर बहुत विनाशकारी असर पड़ता है। उनकी पढ़ाई बाधित होती है, व्यवहार संबंधी समस्याएं आती हैं और उन्हें जो मानसिक आघात पहुंचता है वो लंबे समय तक उनके साथ रह सकता है। ये दिखाता है कि एक स्थिर घर सिर्फ चार दीवारें और एक छत नहीं है, ये मानसिक शांति, सुरक्षा और भविष्य बनाने की नींव है।
जब ये नींव हिलती है तो सबका कुछ बिखरने लगता है।
बिल्कुल, मुझे लगता है ये भावना सार्वभौमिक है, चाहे हम मिलवॉकी की बात करें या मुंबई की। असुरक्षित महसूस करना हर किसी के लिए तकलीफ देह है।
ये विषय वाकई हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम समाज के तौर पर आवास के मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं। डेसमंड की लेखनी की एक और खासियत है उनकी भाषा और वो यादगार पंक्तियां जो पाठक के जहन में रह जाती हैं। कुछ ऐसी पंक्तियां साझा करना चाहेंगी?
हाँ बिल्कुल, किताब ऐसी कई शक्तिशाली पंक्तियों से भरी है जो मुद्दे की गंभीरता को सीधे दिल तक पहुंचाती हैं। एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात है, किराया सबसे पहले खाता है।
इसका क्या मतलब है? सुनने में तो सामान्य लगता है।
इसका मतलब है कि गरीब परिवारों के बजट में किराए का खर्चा इतना बड़ा और जरूरी होता है कि वो उनकी आमदनी का पहला और सबसे बड़ा हिस्सा निगल जाता है। खाना, दवाई, बच्चों की स्कूल की फीस, कपड़े, ये सब जरूरतें बाद में आती हैं अगर पैसा बचा तो।
अच्छा, पहली प्राथमिकता किराया देना है?
हाँ, वरना अगले महीने सड़क पर होंगे। ये दिखाता है कि कैसे आवास की लागत बाकी सभी बुनियादी जरूरतों पर हावी हो जाती है और लोगों को लगातार एक दबाव में रखती है।
एक और कथन है जो सीधे किताब के मुख्य तर्क को सामने रखता है, बेदखली गरीबी का एक कारण है न कि केवल एक स्थिति।
हाँ, ये लाइन एक तरह से पूरी किताब का सार है। ये हमें गरीबी के बारे में हमारी सोच को चुनौती देने के लिए कहती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि लोग बेघर इसलिए होते हैं क्योंकि वो गरीब हैं। डेसमंड कहते हैं नहीं, ये उल्टा भी उतना ही सच है। लोग गरीब इसलिए भी बने रहते हैं या और गरीब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके घरों से निकाल दिया जाता है।
तो बेदखली गरीबी को पैदा करने और उसे बनाए रखने वाला एक सक्रिय कारक है।
बिल्कुल।
और एक पंक्ति जो घर के महत्व को रेखांकित करती है, स्थिर आश्रय के बिना सब कुछ बिखर जाता है।
विदाउट स्टेबल शेल्टर एवरीथिंग एल्स फॉल्स अपार्ट। ये पंक्ति आवास की मूलभूत भूमिका पर जोर देती है। अगर किसी के पास रहने का एक पक्का सुरक्षित ठिकाना नहीं है तो वो अपनी जिंदगी कैसे संभालेगा, नौकरी कैसे टिकेगी, बच्चे स्कूल कैसे जा पाएंगे, सेहत का ध्यान कैसे रखा जाएगा, भविष्य के लिए योजना कैसे बनेगी।
सही बात है, घर वो लंगर है जिसके सहारे जीवन की नाव टिकती है।
बिल्कुल, जब वो लंगर ही उखल जाए तो सब कुछ डामाडोल हो जाता है। ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि आवास सिर्फ एक निजी मामला नहीं, ये समाज की स्थिरता और तरक्की के लिए भी जरूरी है।
ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। तो इन सब कहानियों, विश्लेषणों और शक्तिशाली कथनों से हम क्या सीख सकते हैं? इन विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और समाज को समझने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
मुझे लगता है सबसे पहली और जरूरी चीज ये है कि ये किताब हमें गरीबी और बेघर होने वाले लोगों के बारे में बनी बनाई धारणाओं और पूर्वाग्रहों को तोड़ने में मदद करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई गरीब है तो जरूर उसमें ही कोई कमी होगी, आलसी होगा या उसने गलत फैसले लिए होंगे।
हाँ, ये आम सोच है।
लेकिन डेसमंड की किताब दिखाती है कि मामला इतना सीधा नहीं है। बहुत बार लोग व्यवस्था की खामियों, जैसे कि बहुत महंगे और अस्थिर आवास बाजार, कम वेतन वाली नौकरियां और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा जाल के कारण गरीबी में फंसे रहते हैं। ये हमें व्यक्तिगत विफलताओं से आगे बढ़कर संरचनात्मक बाधाओं को देखने में मदद करती है।
दूसरा, ये हमें अपने जीवन में और समाज में एक स्थिर और किफ़ायती घर के महत्व को पहचानने और उसकी कदर करने में मदद करती है। ये सिर्फ एक छत नहीं है, ये शिक्षा हासिल करने, अच्छी सेहत बनाए रखने, रोजगार पाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ज़रूरी आधार है।
हाँ, और जब हम इस बात को गहराई से समझेंगे तभी हम इसे एक सामाजिक प्राथमिकता बनाने की दिशा में सोच पाएंगे और हम अपने आसपास, अपने शहरों और समुदायों में आवास के मुद्दों के प्रति ज्यादा जागरूक और संवेदनशील हो सकते हैं।
मतलब सवाल पूछना शुरू करें।
हाँ, क्या हमारे यहाँ सबके लिए पर्याप्त और किफ़ायती घर हैं? क्या किराएदारों के अधिकारों की रक्षा होती है? क्या बेदखली की प्रक्रियाएं मानवीय हैं? ये सवाल पूछना और इन मुद्दों पर बातचीत करना ज़रूरी है और शायद ये हमें उन लोगों के प्रति ज़्यादा सहानुभूति रखने में मदद करें जो आवास की असुरक्षा से जूझ रहे हैं।
और नीति निर्माताओं यानी सरकार और प्रशासन के लिए भी इसमें एक बहुत स्पष्ट संदेश है। आवास की समस्या को अक्सर सिर्फ शहरी विकास या रियल इस्टेट का मुद्दा मान लिया जाता है, लेकिन डेस्मंड दिखाते हैं कि ये स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अपराध और सामाजिक स्थिरता जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।
बिल्कुल, इसलिए इसे गंभीरता से लेने और व्यापक समाधान खोजने की जरूरत है। डेस्मंड खुद एक समाधान सुझाते हैं, यूनिवर्सल हाउसिंग वाउचर प्रोग्राम।
उसका मतलब क्या है?
मतलब है कि हर जरूरतमंद परिवार को इतना किराया भत्ता मिले कि वो बाजार में एक ठीक ठाक घर किराए पर ले सकें। ये दिखाता है कि समस्या जटिल है लेकिन समाधान सोचे जा सकते हैं।
तो इस पूरी बातचीत के अंत में अगर हमें इस किताब से सबसे मूल्यवान सबक या अंतिम निष्कर्ष निकालना हो तो वो क्या होगा? आपके लिए सबसे अहम बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्थिर, सुरक्षित और किफ़ायती घर सिर्फ एक इच्छा या सुविधा नहीं बल्कि एक बुनियादी मानवीय ज़रूरत और अधिकार है। और डेस्मंड ये बहुत प्रभावी ढंग से दिखाते हैं कि कैसे इस बुनियादी ज़रूरत की कमी लाखों लोगों की गरीबी का एक मूल कारण है, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे अमीर देश में भी।
हाँ, और ये कि ये समस्या कुछ लोगों की निजी नाकामियों का नतीजा नहीं बल्कि एक प्रणालीगत मुद्दा है जिसमें बाजार की ताकतें, सरकारी नीतियां और गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह सब मिलकर भूमिका निभाते हैं।
और मेरे लिए जो स्थायी अंतर्दृष्टि है वो ये कि कैसे गरीबी कुछ लोगों के लिए इतनी लाभदायक हो सकती है। कम आय वाले आवास बाजार से मुनाफा कमाना न सिर्फ संभव है बल्कि डेस्मंड के वर्णन के अनुसार कभी कभी ये शोषण का रूप भी ले लेता है। लेकिन साथ ही डेस्मंड का काम एक अदृश्य से लगने वाले संकट को हमारे सामने लाता है, उसे मानवीय चेहरा देता है और ये उम्मीद भी जगाता है कि ये संकट इतना बड़ा और जटिल होने के बावजूद हल करने योग्य है। अगर समाज में और राजनीतिक स्तर पर इसे हल करने की इच्छा शक्ति हो तो बदलाव लाया जा सकता है।
तो चलिए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। हमारा समाज, चाहे वो कहीं का भी हो, आवास को कैसे देखता है? क्या हम इसे हर नागरिक का एक बुनियादी अधिकार मानते हैं या सिर्फ बाजार में खरीदने बेचने की एक वस्तु? हमारे इस नजरिए के परिणाम क्या होते हैं और क्या हमें इस नजरिए पर फिर से सोचने की जरूरत है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।